नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एप का दोस्त योगेश और हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में आम आदमी के जीवन में सरकारी नाम। इसके बक्सर एक और सवाल उठता है कि क्या सरकारें चाहती है कि वह लोगों का खाने पीने और पहनावे सहित सामान्य जीवन के तौर तरीकों को भी तय करे, या फिर इन व्यवस्थाओं को एक धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने के लिए इस तरीके के आदेश तो जारी नहीं कर रही है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल में स्वागत रखता हूँ।
जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक ऐसे संवेदनशील विषय पे जिसमें हमारी संविधान की व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने का एक बहुत अच्छा प्रयास, बात वर्ग विशेष की नहीं है, बात जन कल्याण और जनता के हितों से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इस परिचर्चा में आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बोलिए।
जी सर, सब आम आदमी के जीवन में सरकार की नाक, सर इस विषय को क्या समझते सर आप, किस तरीके से इसको समझ कर आप बताना चाहेंगे सर हमारे श्रोताओं के लिए?
देखिए, सरकार जो निर्णय लेती है, क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, उसमें जब भी कोई आदेश या कानून बनता है तो वो समाज हित और समाज कल्याण को दृष्टि में रखकर लिया जाता है। आपको बता दूं कि ये देश जो है वर्ग विशेष की व्यवस्थाओं और उनके निजीगत नियमों से नहीं चलता। ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चलता है, और संविधानिक व्यवस्था जो है जनता के हित से जुड़ी हुई है। यदि सरकार इस तरह का कोई निर्णय लेता है तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये जनता के हित में लिया गया निर्णय है और इसका स्वागत करना चाहिए, और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। जी
जी सर, सर हाल ही में मध्य प्रदेश में बनी नई गवर्नमेंट ने जो खुले में मांस को बेचने को लेकर, या फिर जो भी चिकन मटन बेचते हैं जो फुटकर व्यापारी हैं उनको खुले में रोकने को लेकर बैन लगाया है सर, इस कदम को किस तरीके से देखते हैं, और जो इस तरीके के काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं वो किस तरीके से देखते हैं सर?
देखिए, यहाँ मसला व्यक्ति के स्वास्थ्य का है, व्यक्ति से जुड़ी स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति से जुड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको गलत नहीं मानता। बात जहाँ तक है उनके रोजगार की, तो रोजगार को यहाँ प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है, उस रोजगार को एक नए स्वरूप में स्वच्छता से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य का मानव के शरीर से बहुत गहरा संबंध है, और जो खाद्य पदार्थ बिकते हैं या जो और भी पदार्थ हैं ये सीधे मानव सेवन करता है तो उसका स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ता है, तो उस हिसाब से स्वच्छता से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें किसी वर्ग विशेष और किसी के अहित की बात नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये निर्णय लेके स्वच्छता की ओर एक कदम और बढ़ाया, क्योंकि कई जगह पे देखा गया है कि दुकानें जो मांस या उससे जुड़ी हुई जो व्यवस्था है वहाँ स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, वो खुले में वहाँ बेचा जाता है, मक्खियाँ बैठती है, गंदगी रहती है, और उस मांस का सेवन यदि मानव कर रहा है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत है, और सरकार यदि ऐसा कर रही है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ स्वच्छता से जुड़ा हुआ मसला है और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए, और यदि कानून के माध्यम से उसका क्रियान्वयन हो रहा है और इसके ऊपर नियंत्रण हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीधे सहज सरल तरीके से कोई बात मान्य नहीं होती तो डंडा प्रयोग में लाना पड़ता है, और इसमें मतलब मैं कह रहा हूँ कि डंडा नहीं है बल्कि एक समझाइश है कि व्यापार करिए, लेकिन थोड़ा सा उसका ये ध्यान रखना है कि स्वच्छता बनी रहे, साफ सुथरा वातावरण हो और बंद हो, क्योंकि उसके ऊपर गंदगी का मतलब अस्तित्व न बने, इसलिए ये कदम भी सही है। जी
जी सर, सरकार ने और एक कदम यह उठाया है कि धार्मिक स्थानों पर जो लाउड स्पीकर है उसको प्रतिबंधित किया गया है, उसको बजाने को लेकर रोक लगा दी गई है, तो इस कदम
देखिए,
को किस रूप में देखते हैं सर?
मैं तो इस कदम को बहुत अच्छा मानता हूँ, और देखिए मैंने ये मंदिरों में जो या जो अन्य समुदाय से जुड़े हुए संस्थाओं में जो लाउड स्पीकर बजते हैं और उसका कर्कश ध्वनि, और खास करके शादियों में धार्मिक आयोजनों में बजने वाले डीजे, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर जैसे मुझे जानकारी मिली है कि 108 करोड़ लोग का स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो रहा था, तो ये एक चिंताजनक पहलू है। मुझे याद है महाराष्ट्र के एक शहर में मैं भ्रमण कर रहा था एक कार्यक्रम धार्मिक आयोजन के दौरान, जब मैं उसके डीजे बज रहा था तो जब मैं उसके बाजू से गया तो मेरी फोर व्हीलर जो थी वो वाइब्रेट हो रही थी और मेरा जो हार्ट था तो इतना जबरदस्त तरीके से वाइब्रेट हो रहा था कि मुझे लगा कि मेरी जान ना निकल जाए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसके पीछे बजाने के पीछे क्या उद्देश्य है। अभी देखिए हमारे आसपास कई ऐसे मंदिर है जहाँ पे बड़े शांति के साथ, जैसे मोहगांव का मंदिर देखा, वहां पे जो ओम नमः शिवाय का जो उच्चारण होता है बड़े ही शांतमय तरीके से करवाते हैं, वहां पे बड़े शांत तरीके से होता है। मुझे लगता है कि वो तरीका सब जगह अपनाना चाहिए। और जब क्योंकि संगीत का संबंध हमारे शरीर से है और यदि संगीत को दवाई के रूप में, औषधि के रूप में, एक थेरेपी के रूप में ले तो बहुत फायदेमंद है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब से लाउड स्पीकर बंद हो गए तो मेरी सृजन क्षमता जो है सुबह के समय में, क्योंकि वो समय ध्यान अध्ययन का होता है, क्योंकि हमारा तो आयोजन इतने बड़े बड़े स्तर पे होने लगे कि हर मेरे मैं जब नगर पिपला का हूँ यहाँ हर 8 दिन में कोई ना कोई धार्मिक आयोजन होता था तो उसमें लाउड स्पीकर बहुत जोर जोर से बजते थे। उसमें बच्चे पढ़ाई कब करेंगे ये नहीं समझ में आता था, उसके चिड़चिड़ापन, बुजुर्गों को दिक्कत, बच्चों को दिक्कत हो रही थी। तो आयोजन के करने पे दिक्कत नहीं है, लाउड स्पीकर पे भी दिक्कत नहीं है, बस उसको कुछ एक निश्चित डेसिबल में बजाया जाए, उसको कम इसमें बजाया तो संगीत हमारे लिए थेरेपी बन सकता है। लेकिन हम उसको कान फोड़ू भोपू के रूप में 20 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि के रूप में बजाएंगे तो निश्चित रूप से उसका रक्तचाप पे, हमारे मानसिक पटल पे, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये करके अच्छा किया, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ सुबह लाउड स्पीकर नहीं बन बजते तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी शांत लगता है, सुबह का वातावरण बड़ा शांत लगता है। और साधना करने के लिए, आराधना करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कहीं उल्लेख नहीं है, साधना शांति से हो सकती है। जी
एक व्यक्ति के लिए वह संगीत हो सकता है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए वह कर्कश ध्वनि हो जाती है।
जी जी
रिपोर्ट के मुताबिक 104 मिलियन लोग इस ध्वनि के कारण प्रभावित हो रहे हैं। उनको कई प्रकार की बीमारियां, रक्तचाप हो, अन्य रोग हो, शोर शराबे से कई हानिकारक बीमारियां हो रही है, जिसके कारण ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों और ये कर्कश ध्वनि से ध्वनि ये बीमारियां हो रही है। तो इस कदम को उठाया जा रहा है, क्या ऐसा लगता है आपको कि किसी विशेष वर्ग के लिए है या फिर यह सबके लिए है, और कितना यह उचित कदम देते हैं?
नहीं, ये कदम तो बहुत अच्छा है और ये किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि आप उन बुजुर्ग लोगों को देखिए जो जिनके अंतिम अवस्था चल रही है, बच्चों को देखिए उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि इसको धीमे से बजाया जाए, अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि संगीत के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से बीमारियां ठीक की जा रही, लेकिन हम लोग जो है एक दिन भर, मतलब मुझे कभी कभी लगता था कि यार हम भारत में रहते हैं कि कहीं और, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े संगीत से जुड़े हुए मतलब कार्यक्रम। अभी देखिए संसार में जो कार्यक्रम हुआ था रात के 12-12 बजे तक, मतलब वहाँ पे साउंड सिस्टम को बजाया जाता था जिसमें चुनाव के आचार संहिता का भी उल्लंघन हो रहा था, जबकि 10 बजे के बाद मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। लेकिन डीजे एक ऐसी नई व्यवस्था निर्मित हो रही जिसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है मानसिक पटल पे, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया उचित अच्छा है। ये वर्ग विशेष की बात नहीं है, किसी धर्म को आहत करने की बात नहीं है, ये व्यक्ति के चिंतन से जुड़ा हुआ मसला है, उसके मानसिक स्थिरता से जुड़ा हुआ मसला है, उसके अंदर सृजन क्षमता से जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि अभी देखिए हर गांव में जिस तरीके से चंदा इकट्ठा होता है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें मतलब 10-10, 12-12, 11-12 बजे तक पोंगे बजते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, उससे कहीं ना कहीं स्थिरता लगती है। मुझे पता है एक मंदिर के बाजू में हमारे एक परिचित रहते थे, वो रेमंड में जॉब करते थे, तो कहते हैं कि फिर वो नींद नहीं होती थी उनकी लाउड स्पीकर के वजह से, तो बाद में नींद ना होने से उनको शुगर उनका प्रभावित हुआ और वो उनका देहांत हो गया। तो बजाने के लिए मना नहीं है, बजाइए, लेकिन उसको एक संगीत का जो स्वरूप होता है शांत, उसमें बजाइए। आप 2-2 घंटा यदि मंदिरों के ऊपर लाउड स्पीकर बजा रहे और सुबह 4 बजे 5 बजे से बजा रहे, तो उसका औचित्य क्या है? साधना शांति से होती है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए शांत वातावरण ही उसके सृजन क्षमता को बढ़ाता है। भक्ति का एक नया स्वरूप हो सकता है यदि हमारे बीच में शांति कायम हो तो। जी
जी सर, तो ये थे एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से पर पक्ष विपक्ष में आम आदमी के जीवन में सरकारी नाक इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर जी, मोबाइल वाणी का समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी 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 सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर।
जी, मोबाइल वाणी सबको दोस्त योगेश, धन्यवाद।